मेरे ख्याल से हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मौका आता है जब उससे कोई चीज गुम हो जाती है। वह कोई पुस्तक हो सकती है या शायद आपके घर की चाबी। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन जब भी मुझसे कोई चीज गुम हो जाती है तो सबसे पहला काम जो मैं करता हूं वह यह है कि अपने दिमाग में एक एक कदम पीछे की तरफ जाता हूं और यह याद करने की कोशिश कि मैंने जिस वस्तु को खोया है उसे कहां रखा है। मैं धीरे धीरे समय में पीछे जाता हूं और जब मैंने पीछे जा चुका होता हूं तब जो गलती मैंने की थी उसे सावधानी पूर्वक सुधारता हूं। चाबियों को मेज पर रखता हूं जहां उन्हें होना चाहिए और पुस्तक वापस अलमारी में जाती है। मैंने जो किया था उस पर वापस पीछे जाना और उन्हें सुधारना मेरे हिसाब से गुम हुई चीजों को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है। हमने इस पाठ का शीर्षक रखा है स्वर्गलोक खोया और पाया, और हम अपना ध्यान उत्पत्ति अध्याय 2 पद 4 से उत्पत्ति अध्याय 3 पद 24 पर केंद्रित करेंगे, जो कि अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पाप में गिरने की कहानी का वर्णन करती है। हम देखेंगे कि मूसा ने आदम और हव्वा द्वारा स्वर्ग लोक को खो दिए जाने के बारे में लिखा ताकि इसराइल को प्रोत्साहित करे कि वे पीछे जाकर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा द्वारा उठाए गए गलत कदम पर गौर करें और अपने जीवन में सुधार लाते हुए उस गलती को ना दोहराएं। इसराइली स्वर्ग लोक को दोबारा प्राप्त करने की उम्मीद तभी कर सकते थे जब वे आदम हव्वा की कहानी से शिक्षा लेते हुए उनकी गलती को ना दोहराएं। और यहां हम यह भी देखेंगे कि जो प्रोत्साहन मूसा ने इसराइल को दिया था परमेश्वर का वही संदेश आज हमारे लिए भी है। आदम और हव्वा के द्वारा उठाए गए कदमों में पीछे जाने और उनकी गलती को सुधारने के द्वारा मसीही लोग भी आज स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 और अध्याय 3 की हमारी जांच 3 भागों में विभाजित होती है। सबसे पहले हम इन अध्यायों की साहित्यिक संरचना की जांच करेंगे। दूसरा, हम इन अध्यायों के वास्तविक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि इस बात को समझ सकें कि मूसा के इस तरह से इसराइल के वंशजों को लिखने के पीछे क्या कारण था। और तीसरा, हम अपना ध्यान वर्तमान प्रासंगिकता की तरफ केंद्रित करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस अध्याय को हमारे जीवन में लागू करने में नया नियम किस तरह से हमारा मार्गदर्शन करता है। आइए अपने अध्याय की साहित्यिक संरचना के साथ शुरू करते हैं। यद्यपि उत्पत्ति अध्याय 2 और 3 एक लंबा अध्याय है और कई विषयों का वर्णन करता है, परंतु वास्तव में यह एक संगठित कहानी भी है। इन अध्यायों को सही रीति से समझने के लिए हमें इन दोनों अध्यायों को एक साहित्यिक इकाई के रूप में देखने की आवश्यकता है। उत्पत्ति अध्याय 2 और 3 में साहित्यिक संरचना की जांच के दौरान हमारे पास दो प्रमुख मुद्दे होंगे। सबसे पहले हम इन अध्यायों के प्रमुख हिस्सों की समीक्षा करेंगे और दूसरा, हम इन विभिन्न भागों के बीच पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण समरूपताओं पर टिप्पणी करेंगे ताकि उस बात की गहराई को समझ सकें जिसे मूसा इसराइल से कह रहा था। आइए उत्पत्ति अध्याय 2 और 3 की साहित्यिक संरचना के अवलोकन के साथ शुरू करते हैं। अध्याय 2 पद 4 के पहले भाग में दिखाई देने वाले उस संक्षिप्त शीर्षक के अलावा ये दोनों अध्याय 4 प्रमुख भागों में विभाजित होते हैं और इन 4 प्रमुख भागों को विषयों और पात्रों में बदलावों के साथ दर्शाया गया है। हमें इन 4 भागों पर विचार करना चाहिए और उनके मूल विषय वस्तु को सारांशित करना चाहिए। हमारी कहानी का पहला नाटकीय चरण अध्याय 2 पद 4 से 17 में प्रकट होता है, जहां हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा था। ये पद अदन की वाटिका के मनोरम दृश्य के साथ शुरू होते हैं, और जैसे कि यह अध्याय हमें बताता है कि पूरी वाटिका आदम के निवास और काम करने के लिए एक शानदार जगह थी। फिर इस भाग का संबंध आदम की सृष्टि और वाटिका में काम करने की उसकी नियुक्ति तक सीमित हो जाता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आदम को यह महान सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसे परमेश्वर की ओर से वाटिका की देखरेख करनी थी। हमारी कहानी का दूसरा चरण अध्याय 2 पद 18 से 25 में पाया जाता है, जिसको हम मानवता की समृद्ध की गई परिस्थिति भी कहते हैं। इसमें परमेश्वर ने आदम के जीवन को और भी अधिक आशीषों से भरा। यह भाग एक नई समस्या के साथ शुरू होता है, जिसके बारे में अध्याय 2 पद 18 में पढ़ा जा सकता है। वहां परमेश्वर ने आदम को देखा और इन वचनों को कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अध्याय 2 पद 18 से 25 का बाकी हिस्सा बताता है कि परमेश्वर ने इस समस्या का समाधान कैसे किया। आदम ने जानवरों के बीच एक साथी की तलाश की, लेकिन अंत में परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया और उसे आदम के पास लाया। इस प्रकार से परमेश्वर ने उस अद्भुत सृष्टि को और ज्यादा समृद्ध किया जिसे उसने पहले ही से आदम और हव्वा के लिए बनाया था। हमारी कहानी का तीसरा चरण अध्याय 3 पद 1 से 21 में पाया जाता है, जिसे हम कहेंगे मानवता की परिस्थिति को शापित किया जाना। यह कहानी अध्याय 3 पद 1 में एक नए विषय और पात्र बहकाने वाले सर्प के प्रवेश के साथ शुरू होती है। इस बिंदु से आगे अध्याय 3 पद 1 से 21 में हम सर्प के बहकावे और उसके बहकावे के नतीजों के विषय में पढ़ते हैं। हव्वा सर्प के बहकावे में आ जाती है और उस वर्जित फल को स्वयं और आदम को खिलाती है, जिसे खाने को परमेश्वर ने मना किया था, और इस तरह से वे दोनों परमेश्वर द्वारा शापित किए गए। इस अध्याय के व्यापक ढांचे में चौथा तत्व अध्याय 3 पद 22 से 24 में वर्णित है, जिसका शीर्षक हमने रखा है मनुष्य का वाटिका से बाहर निकाला जाना। इस भाग को प्रस्तुत विषय में एक महत्वपूर्ण बदलाव के द्वारा चिन्हित किया गया है। यहां हम परमेश्वर को जीवन के वृक्ष से जुड़ी समस्या के बारे में बताते हुए पाते हैं। अध्याय 3 पद 22 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं, मनुष्य, ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। आदम द्वारा इस वृक्ष के फल को खाने की संभावित समस्या से निपटने के लिए परमेश्वर ने आदम को वाटिका से बाहर निकाल दिया और अदन के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए करूबों और ज्वलंत तलवार को तैनात कर दिया। उस समय से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किए बिना मनुष्य अदन की वाटिका तक नहीं पहुंच सकता। इन अध्यायों के चार प्रमुख विभाजनों को ध्यान में रखते हुए हम उत्पत्ति अध्याय 2 से 3 पर ज्यादा बारीकी से गौर करेंगे, ताकि इन अध्यायों में दर्शाए गए नाटकीय समरूपता को देख सकें। इन भागों में विभिन्न तत्वों की तुलना करके मूसा ने अपनी कहानी की प्रमुख बातों को उजागर किया था। इस कहानी की समरूपताओं को समझने के लिए हम पहले उस समानता की ओर देखेंगे जो हमारी कहानी की शुरुआत और अंत के बीच मौजूद है, और फिर हम इस कहानी के मध्य भागों की समरूपता पर गौर करेंगे। आइए पहले इस अध्याय के आरंभ और अंत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, उत्पत्ति अध्याय 2:4-17 और उत्पत्ति अध्याय 3:22-24 के मध्य कम से कम 3 महत्वपूर्ण तरीकों से तीव्र विरोधाभास नजर आता है। पहला विरोधाभास स्थान के विषय देखने को मिलता है। यह कहानी अध्याय 2:7 में शुरू होती है, जिसमें परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका के भीतर रखा। आदम ईश्वरीय आशीषों से भरपूर स्थान में रहता एवं काम करता था। अद्भुत वनस्पति, जीवन देने वाला पानी, कीमती धातुओं और पत्थरों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। इसके विपरीत अध्याय 3:24 में कहानी की समाप्त होते होते परमेश्वर आदम और हव्वा को वाटिका से बाहर निकाल देता है। यह भौगोलिक अंतर स्पष्ट कर देता है कि पृथ्वी पर मानव जाति के लिए सबसे चाहने योग्य स्थान अदन की वाटिका था। प्रत्येक भाग में दूसरा विरोधाभास वाटिका के विशेष वृक्षों पर है। यद्यपि अध्याय 2:4-17 दो वृक्षों का वर्णन करता है, जीवन का वृक्ष और भले एवं बुरे ज्ञान का वृक्ष, लेकिन जब हम अध्याय 2:17 पर आते हैं तो ध्यान केवल एक वृक्ष की ओर मुड़ जाता है, ज्ञान का वृक्ष। इस वृक्ष के पास मानव जाति को भलाई एवं पाप का अनुभव परख ज्ञान देने की शक्ति थी। यह उन चीजों को देखने के लिए उनकी आंखों को खोल सकता था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके विपरीत अध्याय 3:22-24 में कहानी की समाप्ति पर परमेश्वर को अब भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से मतलब नहीं है, बल्कि उनकी बातें विशेष रूप से जीवन के वृक्ष के इर्द गिर्द होती हैं। इस वृक्ष के पास मानव जाति को अनंत जीवन देने की शक्ति है, लेकिन परमेश्वर ने आदम को वाटिका से निर्वासित कर दिया और इस वृक्ष तक उसकी पहुंच पर रोक लगा दी। यह विरोधाभास स्पष्ट करता है कि वाटिका तक खुली पहुंच और वहां पाई जाने वाली सभी आशीषें जो कभी मनुष्य के पास हुआ करती थीं, तब तक उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती जब तक स्वयं परमेश्वर रोक को हटाने का आदेश नहीं देता। हमारी कहानी की शुरुआत और समाप्ति के बीच तीसरा विरोधाभास मनुष्य को सौंपे गए कार्य के विषय में है। अध्याय 2:15 का पहला चरण बताता है कि परमेश्वर ने आदम को बिना किसी कष्ट और परेशानी के वाटिका में आशीषित कार्य करने के लिए नियुक्त किया था, परंतु अध्याय 3:23 में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वाटिका से निर्वासित कर दिया और वाटिका के बाहर उन्हें कड़ी मेहनत करने की आज्ञा दी। यह विरोधाभास भी कहानी के प्रति एक आवश्यक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। न सिर्फ मनुष्य ने अदन में मिलने वाले अद्भुत जीवन को खो दिया था, लेकिन जब तक हम वाटिका से दूर रहते हैं तब तक हम पर दंड की आज्ञा है कि हम कठिनाई और कष्ट भोगेंगे। उत्पत्ति अध्याय 2 और 3 के आरंभ एवं अंत भाग के बीच नजर आने वाले ये तीनों विरोधाभास इस कहानी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। मूसा ने मनुष्य की परिस्थिति में आए उस प्रमुख बदलाव के बारे में लिखा जो अति प्राचीन समयों में घटित हुआ था। परमेश्वर ने मूल रूप से यह नियोजित किया था कि मनुष्यों को उसकी वाटिका में रहना चाहिए, लेकिन आदम और हव्वा अपने पाप के कारण कठिनाई और परेशानी में फंस गए और उस वृक्ष से दूर हो गए जो अनंत जीवन देता था। अब जैसा कि हम देखेंगे, विरोधाभास के ये समूह उन परिस्थिति की तरफ प्रत्यक्ष तौर पर इशारा करते हैं जिसमें इसराइलियों ने स्वयं तब पाया जब मूसा उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर ले जा रहा था। इसराइली लोग जब मिस्र में गुलामी और क्रूरता से पीड़ित थे तो वे अदन से भी बहुत दूर थे। उन्हें अदन में परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों को वापस पाने की आवश्यकता थी। कहानी के बाहरी भागों में प्रस्तुत विषम समरूपता को ध्यान में रखकर हमें अपने अध्ययन को कहानी के मध्य भागों अध्याय 2 पद 18 से 25 और अध्याय 3 पद 1 से 21 की ओर केंद्रित करना चाहिए। ये दो आंतरिक चरण आरंभ और अंत के बीच के खाली स्थान को भरते हैं और वे कम से कम 3 तरीकों से विषम समरूपता के अपने समूह बनाते हैं। पहला विरोधाभास परमेश्वर के साथ मनुष्यों के संबंध पर आधारित है। दूसरे चरण में हम आदम और परमेश्वर के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध देखते हैं। अध्याय 2 पद 18 में परमेश्वर आदम के लिए चिंता करता है और हव्वा के रूप में आदम के लिए एक खूबसूरत साथी की रचना करता है। यहां जो तस्वीर उभरती है उसमें परमेश्वर और मानव जाति के मध्य घनिष्ठ प्रेम संबंध और शांति दिखाई देती है। फिर भी कहानी के तीसरे भाग में परमेश्वर और मानव जाति के बीच आरंभिक मेल एवं एकता असामंजस्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और अध्याय 3 पद 8 में वे परमेश्वर की उपस्थिति से छुपने का प्रयास करते हैं तथा तब परमेश्वर का क्रोध आदम और हव्वा पर भड़कता है। दूसरा विरोधाभास मानवीय संबंधों में है। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 18 से 25 के दूसरे चरण में आदम और हव्वा परम आनंद में थे। अध्याय 2 पद 23 में आदम बाइबल की पहली प्रेम कविता की रचना करते हुए कहता है कि हव्वा मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, और वे दोनों नंगे और बिना किसी शर्म के एक साथ रहते थे। हालांकि अध्याय 3 पद 16 में परमेश्वर इसके विपरीत यह घोषणा करते हुए इस संबंध को शापित करता है कि पुरुष और स्त्री के बीच संघर्ष चलता रहेगा। स्त्री की लालसा उसके पति की ओर होगी और पति उस पर प्रभुता करेगा। इन वचनों ने उजागर किया कि आदम और हव्वा के पाप ने न केवल परमेश्वर के साथ उनके संबंध को खराब किया बल्कि उनके आपसी संबंध को भी बिगाड़ दिया, और उस दिन से आज तक मानवीय संबंधों में कठिनाई और संघर्ष बना हुआ है। तीसरा विरोधाभास बुराई के साथ मनुष्य के संबंध में प्रकट होता है। दूसरे चरण में कहानी से बुराई गायब है। आदम और हव्वा पूरी तरह से निर्दोष और बुराई की शक्ति से अलग थे, लेकिन तीसरे चरण तक आते आते मनुष्य जाति सर्प के झूठ का शिकार होकर पाप में गिर चुकी थी और बुराई के साथ एक लंबे संघर्ष में उलझ गई थी। अध्याय 3 पद 15 में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि एक दिन हव्वा का बीज सर्प पर विजय प्राप्त करेगा, लेकिन आदम और हव्वा को कोई तत्काल जीत नहीं दी गई थी। कहानी के दूसरे और तीसरे भागों के बीच ये विरोधाभास हमें मूसा की उन कई चिंताओं को देखने में मदद करते हैं जब वह इस कहानी को लिख रहा था। मूसा ने आदम और हव्वा के बारे में इस ढंग से लिखा जो इसराइल के अनुभव से भी मेल खाते थे। पाप ने इसराइल के जीवन में विनाश को बरकरार रखा था। इसने परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ लोगों के संबंध को नुकसान पहुंचाया था, और इससे भी अधिक हर दिन जो कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता वे मूसा और इसराइल को याद दिलाती थी कि आदम और हव्वा के समान उन्हें भी उस समय का इंतजार करना होगा जब परमेश्वर अंत में अपने लोगों को बुराई पर जीत देगा। इस विषय वस्तु की साहित्यिक संरचना को ध्यान में रखकर अब हम इस अध्याय के वास्तविक अर्थ का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर की वाटिका से मनुष्यों के निष्कासन की कहानी को मूसा ने क्यों लिखा? जब वह इसराइल को प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर ले जा रहा था तो वह उन्हें क्या संदेश दे रहा था? अब यह निश्चित है कि मूसा ने उन इसराइली को जिनकी वह अगुवाई कर रहा था बुनियादी स्तर पर कुछ सामान्य धर्म विज्ञान के विषयों की शिक्षा देने हेतु इस कहानी को लिखा। उसने संसार में पाप की शुरुआत, उसकी प्रकृति और परिणामों के बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। फिर भी, जैसा कि हमने पिछले पाठ में देखा था, मूसा ने अपने अति प्राचीन इतिहास को सिर्फ इसराइल को इतिहास एवं सामान्य धर्म विज्ञान के विषयों के बारे में सूचित करने के लिए नहीं लिखा था। इसके विपरीत, कई अन्य प्राचीन लेखकों के समान मूसा ने भी अपने लोगों को मौजूदा धार्मिक एवं सामाजिक हालात के बारे में व्यावहारिक निर्देश देने के लिए अपने अति प्राचीन इतिहास को लिखा, मुख्यतः मिस्र को छोड़ने और कनान देश जाने के मामले में। यह समझने के लिए कि मूसा ने अति प्राचीन अदन की वाटिका और कनान पर इसराइल की जीत को किस तरह से आपस में जोड़ा था, हमें उसकी कहानी के तीन पहलुओं को देखना होगा। सबसे पहले, मूसा द्वारा अदन की वाटिका का चित्रण। दूसरा, आदम और हव्वा से विश्वसनीयता की अपेक्षा पर उसका ध्यान केंद्रण। और तीसरा, आदम और हव्वा पर आए श्रापों का चित्रलेखन। आइए सबसे पहले अदन की वाटिका के विषय मूसा द्वारा दिए गए वर्णन को देखते हैं। वाटिका के विषय में मूसा का दिया विवरण इतना जटिल है कि संभव है कि हमारे कई आधुनिक प्रश्नों का उत्तर शायद हमें कभी प्राप्त न हो सके। फिर भी मूसा द्वारा किए गए चित्रण की मुख्य बातों को समझना हमारे लिए संभव है। जैसा कि हम देखेंगे कि मूसा ने अदन की वाटिका का विवरण इस ढंग से दिया जिसमें वह अदन को प्रतिज्ञा किए हुए देश के समान प्रस्तुत कर सके। मूसा के दृष्टिकोण के अनुसार वह जिस देश की तरफ इसराइल को ले जा रहा था वह वास्तव में अदन नामक अति प्राचीन देश का ही स्थान था। उत्पत्ति अध्याय 2 और 3 के कई पहलू स्पष्ट करते हैं कि मूसा चाहता था कि इसराइल कनान को अदन के देश के साथ जोड़े, लेकिन विशेष रीति से उसकी कहानी की 2 विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। पहला, अदन की पहचान, और दूसरा, अदन की पवित्रता। आइए पहले अदन की पहचान को देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2:10-14 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। मूसा ने लिखा कि एक ही महानदी अदन से बहती थी और 4 धाराओं में विभाजित होती थी। ये धाराएं पीशोन, गिहोन, हिद्देकेल और फरात थीं। अदन की एक प्रमुख नदी इन 4 छोटी नदियों को पानी देती थी। यह उनकी मुख्य स्रोत थी। अब जब हम यहां मूसा द्वारा दिए गए विवरण की जांच करते हैं तो हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि संसार की शुरुआत से ही हमारे ग्रह के इतिहास में कई भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं, यहां तक कि मूसा के समय में भी कोई एक महानदी नहीं थी जो इन 4 धाराओं को पानी देती थी। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि पानी का यह केंद्रीय स्रोत केवल अंत के समय में प्रकट होगा। फिर भी मूसा के द्वारा उन चार नदियों का जिक्र करना जिन्हें इस केंद्रीय स्रोत से पानी मिलता था हमें उस स्थान की एक अनुमानित तस्वीर देता है जहां उसके मतानुसार अदन स्थित था। हम आधुनिक समय की हिद्देकेल और फरात नदियों के क्षेत्र के साथ अध्याय 2 पद 14 में वर्णित हिद्देकेल और फरात की पहचान कर सकते हैं। इस तथ्य ने कि उत्पत्ति की पुस्तक वास्तव में इन दोनों नदियों का वर्णन करती है, कई आधुनिक टीकाकारों को यह संकेत दिया है कि उत्पत्ति की पुस्तक बेबीलोन की पौराणिक कथाओं से सहमत होती है कि अदन मेसोपोटामिया के क्षेत्र में ही स्थित था। बेबीलोन की भाषा में अदन का अर्थ है एक समतल भूमि या एक खुली सपाट भूमि, जो कि हिद्देकेल फरात के क्षेत्र के लिए उपयुक्त शब्द है। हालांकि इब्रानी भाषा में अदन का अर्थ एक समतल सपाट नहीं है, परंतु इसका अर्थ है एक सुहावनी या मनमोहक जगह। इसलिए मूसा ने बेबीलोनियाई शब्द का प्रयोग बिल्कुल न करते हुए एक इब्रानी शब्द का प्रयोग किया जो अदन के लिए बेबीलोनियाई शब्द के जैसा ही सुनाई देता था। लेकिन इस स्थान को लेकर मूसा की अवधारणा बेबीलोनियाई अवधारणा से भिन्न थी। वास्तव में उत्पत्ति की कहानी स्पष्ट रूप से बताती है कि अदन मेसोपोटामिया तक ही सीमित नहीं था, जैसा कि हमने उत्पत्ति अध्याय 2 पद 10 में देखा कि हिद्देकेल और फरात एक बहुत बड़ी नदी से निकलते थे जो कि अदन में स्थित थी। हम पद 10 में पढ़ते हैं, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से बहकर चार धाराओं में बट गई। इन पदों में हम सीखते हैं कि अदन में स्थित नदी हिद्देकेल और फरात दोनों को पानी देती थी, न कि अदन हिद्देकेल और फरात के क्षेत्र तक सीमित था। मूसा ने हिद्देकेल और फरात का उल्लेख इसलिए किया ताकि पूर्वी अदन के क्षेत्रों के बारे में सामान्य जानकारी या ज्ञान प्रदान कर सके। पूर्व में ये महान नदियां अदन की पूर्वी सीमा को चिन्हित करते थे। उत्पत्ति अध्याय 2 में अन्य नदियों एवं उनके स्थित स्थानों का वर्णन इस मत या दृष्टिकोण की पुष्टि करती है। अध्याय 2 पद 11 और 13 में मूसा ने नदियों की एक और जोड़ी का उल्लेख किया। उसने लिखा कि अदन की नदी पिशोन को पानी देती थी जो हवीला के भीतर से बहती थी, और वह गिहोन को भी पानी देती थी जो कोश के सारे देश को घेरे हुए था। पुराने नियम में हवीला और कोश की भूमि को अक्सर मिस्र के क्षेत्र से जोड़ा गया है। हम पक्के तौर पर यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि महान नील नदी और इन नदियों के संबंध के विषय में मूसा की क्या समझ थी, लेकिन यह कहना ठीक है कि उसने मिस्र के उत्तरी क्षेत्र को अदन की पश्चिमी सीमा के रूप में इंगित किया था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मूसा के दृष्टिकोण से अदन कोई छोटी जगह नहीं थी। यह हिद्देकेल फरात से लेकर मिस्र की सीमा तक फैला हुआ एक बड़ा क्षेत्र था। लगभग वह पूरा क्षेत्र जिसे अब हम उपजाऊ क्रेसेंट या सभ्यता की शैशव स्थली भी कहते हैं। और इसी सुहावने स्थान में एक विशेष वाटिका थी, अदन की वाटिका, जो अदन के बड़े क्षेत्र का केंद्र बिंदु थी। शुरुआत में मूसा द्वारा उपजाई क्रेसेंट के साथ अदन की पहचान बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत में जिन दिनों मूसा उत्पत्ति की पुस्तक को लिख रहा था उस समय इसराइल के लिए अदन के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति की पुस्तक में कई अन्य स्थानों पर इसराइल को अदन की भूमि के विषय शिक्षा देने के उद्देश्य से मूसा ने उत्पत्ति अध्याय 2 की ओर इशारा किया था कि अदन का देश एक उपजाऊ भूमि है और वह देश है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इसराइल से की थी, वह देश जहां वह उन्हें ले जा रहा था। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से तब स्पष्ट होता है जब परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 15 पद 18 में इब्राहिम से बात की थी। इस अनुच्छेद में प्रतिज्ञा किए हुए देश की सीमाओं का परमेश्वर ने जिस तरह से वर्णन किया उसे सुनिए। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी। मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है मैंने तेरे वंश को दिया है। यहां पर हम एक तरफ देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की कि उसका देश हिद्देकेल फरात के क्षेत्र तक फैलेगा और वह मिस्र की नदी तक पहुंच जाएगा। कई टीकाकारों ने सुझाव दिया है कि यह मिस्र की महानद नील नदी के लिए इशारा नहीं हो सकता, बल्कि यह इशारा मिस्र देश के सीनै वाली सीमा में छोटी नदी के लिए है। सभी संभावनाओं में यह स्पष्ट है कि यह पद अदन की भौगोलिक सीमाओं को दिखाता है, जैसा कि वे उत्पत्ति अध्याय 2 में प्रकट होते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 के लिए यह इशारा स्पष्ट करता है कि मूसा विश्वास करता था कि परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके वंशजों से उस देश की प्रतिज्ञा की थी जो एक समय में अदन का देश कहलाता था। मूसा के दृष्टिकोण से जब इसराइल कनान देश की ओर जा रहा था तो वे वास्तव में अदन देश के अति प्राचीन क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे थे। अदन की ओर इसराइल जाने के महत्व को उजागर करने के लिए मूसा ने उस स्थान की पवित्रता पर जोर दिया। उसने इसराइल को सिखाने के लिए अदन की पवित्रता की ओर इशारा किया कि प्रतिज्ञा किया हुआ देश जहां वह उन्हें ले जा रहा था एक ऐसा स्थान था जहां वे परमेश्वर की विशेष उपस्थिति में प्रवेश पाने की आशीष को प्राप्त कर सकते थे। वह प्राथमिक तरीका जिसमें मूसा ने अदन की पवित्रता को व्यक्त किया था वह उस शब्दावली में था जिसका उपयोग वह मिलाप वाले तंबू का वर्णन करने के लिए भी करता है। यद्यपि परमेश्वर सर्वव्यापी है और एक सामान्य समझ के अनुसार हर जगह मौजूद है, मूसा ने एक मिलाप वाला तंबू बनाया जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलने के लिए विशेष तरीके से आता है और इस मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा, अपनी व्यवस्था देगा, अपने लोगों की आराधना को स्वीकार करेगा और अपने अनुग्रह से उन्हें आशीषित करेगा। इसलिए जब मूसा ने अदन की वाटिका को उस शब्दावली में चित्रित किया जिसका उपयोग उसने मिलाप वाले तंबू का वर्णन करने के लिए भी किया तो उसने यह खुलासा किया कि अदन अर्थात कनान पृथ्वी पर परमेश्वर की विशेष उपस्थिति का स्थान था। वहां पर इसराइल परमेश्वर की महान आशीषों को प्राप्त कर सकता था। अदन के कम से कम 7 पहलू ऐसे हैं जो यह संकेत देते हैं कि वह मिलाप वाले तंबू के समान परमेश्वर की विशेष उपस्थिति का पवित्र स्थान था। सबसे पहले अध्याय 3 पद 8 में जब मूसा ने एक विशेष अभिव्यक्ति का उपयोग किया तो वह कहता है कि परमेश्वर वाटिका में फिरता था। इब्रानी भाषा में फिरना के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह मित हालक है। यह शब्दावली महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वही विशेष तरीकों में एक है जिसमें मूसा ने लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 पद 12 और अन्य वचनों में मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति का वर्णन किया था। अध्याय 2 पद 9 में हमने जीवन के वृक्ष के बारे में पढ़ा जो अदन की वाटिका की प्रमुख विशेषताओं के रूप में वर्णित है। इस पवित्र वृक्ष के पास उन लोगों को अनंत जीवन देने की शक्ति थी जो इसके फलों को खाते थे। और यद्यपि बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहती, लेकिन हाल के पुरातात्विक शोध ने ध्यान दिया है कि प्राचीन संसार में कई जगहों पर जीवन के वृक्ष के चित्रों को पवित्र स्थानों में शैलीबद्ध किया गया है। यह सबूत दृढ़ता से संकेत देता है कि मूसा के मिलाप वाले तंबू का सात शाखों वाला दीपक दीवट शायद बहुत कुछ जीवन के वृक्ष का शैलीबद्ध प्रतिनिधित्व था। इस तरह अदन की वाटिका को पृथ्वी पर वास्तविक पवित्र स्थान के रूप में दिखाया गया है। क्षेत्र में पाए जाने वाले सोने और सुलेमानी पत्थर पर ध्यान केंद्रित करना मूसा का तीसरा तरीका था, जिसमें उसने अदन की पवित्रता पर ध्यान दिया। अध्याय 2:12 में पढ़ते हैं कि अदन के क्षेत्र में सोना और सुलेमानी पत्थर बड़ी मात्रा में उपलब्ध थे, जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं। निर्गमन अध्याय 25-40 मिलाप वाले तंबू के निर्माण के महत्वपूर्ण अवयवों के रूप में सोने और सुलेमानी पत्थर का उल्लेख करता है। अदन की वाटिका और मिलाप वाले तंबू के बीच चौथा संबंध करूबों और स्वर्गदूतों की उपस्थिति है। अध्याय 3:24 के अनुसार परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष की रक्षा और चौकसी करने के लिए अदन की वाटिका में करूबों को नियुक्त किया था। ठीक इसी तरह निर्गमन अध्याय 25:18 और अध्याय 37:9 इत्यादि पदों में हम मिलाप वाले तंबू के सजावट में करूब के रखे जाने को देखते हैं। इन करूबों ने इसराइल को न सिर्फ स्वर्ग के स्वर्गदूतों के बारे में बल्कि अदन में पवित्र स्थान की चौकीदारी करते स्वर्गदूतों के बारे में भी याद दिलाया था। 5. हम अध्याय 3:24 में पढ़ते हैं कि अदन का प्रवेश द्वार पूर्व में अर्थात पूर्वी दिशा में था। यह तथ्य तब तक महत्वहीन लगता है जब तक हम इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि निर्गमन अध्याय 27:13 और कई अन्य वचनों के अनुसार मिलाप वाले तंबू का प्रमुख प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में था। प्राचीन मध्य पूर्व में अधिकांश मंदिरों के साथ ऐसा ही होता था। एक बार फिर अदन को परमेश्वर के पवित्र निवास स्थान के रूप में दिखाया गया है। 6. अदन में आदम की सेवा के बारे में लिखते हुए मूसा ने उस भाषा का प्रयोग किया है जिसका वह दूसरी जगहों पर मिलाप वाले तंबू में लेवियों की सेवा के लिए करता है। अध्याय 2:15 में मूसा ने वाटिका में आदम की जिम्मेदारी का वर्णन निम्न तरीके से किया है। तब परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ये शब्द गिनती अध्याय 3:7-8 और अध्याय 8:26 में भी एक साथ प्रकट होते हैं। वहां मूसा ने भी इसी अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हुए मिलाप वाले तंबू में लेवियों की सेवा का वर्णन किया है। आदम और हव्वा अदन की वाटिका में याजकों के समान सेवा करते थे। 7. यह महत्वपूर्ण है कि अदन की वाटिका का बनाया जाना सृष्टि के 6 दिनों के बाद हुआ था, जैसा कि हमने पिछले पाठ में देखा था। 6 दिनों की सृष्टि का कार्य उत्पत्ति अध्याय 2:1-3 में परमेश्वर द्वारा सप्त को मनाने के साथ समाप्त हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि निर्गमन अध्याय 24:16 और उससे आगे के पदों के अनुसार मूसा ने परमेश्वर के साथ पर्वत पर 6 दिन बिताए थे और परमेश्वर ने उसे 7वें दिन मिलाप वाला तंबू बनाने के निर्देश दिए। अदन की 7 विशेषताएं दिखाती हैं कि मूसा ने मिलाप वाले तंबू के जैसे ही अदन की वाटिका को पवित्र स्थान के रूप में माना था। यह संसार के अंदर एक ऐसा स्थान था जहां परमेश्वर की विशेष उपस्थिति रहती थी और उस स्थान के निकट होना परमेश्वर की आशीषों के निकट होना था। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है, मूसा विश्वास करता था कि कनान का स्थान ही अदन था। परिणाम स्वरूप अदन की पवित्रता पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा मूसा कनान देश की पवित्रता पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा था। कनान के निकट होने का अर्थ था कि उस स्थान के निकट होना जिसे परमेश्वर ने शुरुआत से अपने पवित्र स्थान होने के लिए अभिषेक किया था। व्यवस्था विवरण अध्याय 12 पद 10 और 11 उन सबसे उत्कृष्ट वचनों में से एक है जहां मूसा के द्वारा भविष्य में प्रकट होने वाले पवित्र स्थान की शिक्षा मिलती है। वहां उसने इन वचनों को लिखा, परंतु जब तुम यर्दन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ, और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें चढ़ाना। यह वचन कनान देश के लिए मूसा के दर्शन की एक प्रमुख विशेषता को उजागर करता है। उसने जोर देकर कहा कि एक दिन कनान परमेश्वर की उपस्थिति के लिए स्थायी निवास स्थान होगा, वह परमेश्वर यहोवा का मंदिर ठहरेगा। यह निश्चित है कि मूसा के दिनों का कनान देश आरंभ के अदन के मूल स्वरूप की एक झलक मात्र ही था, यहां तक कि जब सुलेमान ने यरूशलेम के मंदिर का निर्माण किया तब भी प्रतिज्ञा किया हुआ देश पूरी रीति से पाप से छुड़ाया नहीं गया था, न ही उसको उसकी मूल सिद्धता में फिर से बहाल किया गया था। फिर भी जब मूसा ने अदन की पवित्रता के बारे में लिखा तो उसने इसराइलियों के सामने यह दर्शन रखा कि एक दिन उनका देश कैसा बन सकता है। प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचना अदन के निकट पहुंचना था, यानी पृथ्वी पर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति का स्थान। जिस तरह परमेश्वर ने शुरुआत में आदम और हव्वा को अद्भुत वाटिका रूपी मंदिर में रखा था, वैसे ही परमेश्वर अब इसराइल को कनान देश में ले जा रहा था। और एक बार जब वे उस देश में रहने लगते हैं तो देश के लोग परमेश्वर की विशेष उपस्थिति में रहने के आनंद और आशीषों का अनुभव करना शुरू कर देंगे। अब जबकि हम देख चुके हैं कि मूसा ने कैसे अदन में आदम और हव्वा की आशीषों को उस अनुग्रह के पूर्वाभास के रूप में प्रस्तुत किया जो प्रतिज्ञा किए हुए देश में इसराइल के लिए इंतजार कर रहा था, तो अब हम उत्पत्ति अध्याय 2 और 3 में दूसरे विषय को देखने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर द्वारा आदम और हव्वा की विश्वसनीयता की परीक्षा। यह विषय मूसा की प्रस्तुति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अदन के बारे में मूसा की कहानी के लिए विश्वास योग्यता का विषय महत्वपूर्ण था। यद्यपि अदन आश्चर्यजनक आशीष का स्थान था, वह ऐसा स्थान भी था जो नैतिक जिम्मेदारी की मांग करता था। मूसा ने इस तथ्य पर इसलिए जोर दिया क्योंकि वह चाहता था कि इसराइली लोग याद रखें कि प्रतिज्ञा का देश जहां वे जा रहे थे वह परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति इसराइल के वफादार होने की भी मांग करता था। यह समझने के लिए कि मूसा ने इस विषय पर क्यों जोर दिया, हमें दो बातों की खोज करने की आवश्यकता है, अदन की वाटिका विश्वास योग्यता की अपेक्षा और कनान में विश्वास योग्यता की अपेक्षा। आइए पहले उस विश्वास और सच्चाई को देखें जिसकी अपेक्षा अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हव्वा से करता था। वाटिका में विश्वसनीयता का विषय उत्पत्ति अध्याय 2 की शुरुआत में ही प्रकट होता है और यह अध्याय 2 और अध्याय 3 के पूरे अध्यायों में बार बार प्रकट होता है और कई मायनों में यह इन अध्यायों का प्रमुख विषय है। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 16 और 17 में परमेश्वर ने जिस तरीके से विश्वास योग्य बने रहने के लिए आदम को चुनौती दी उसे सुनिए। तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्यों परमेश्वर ने हमारे पहले माता पिता को इस विशेष वृक्ष से खाने से मना किया था। आखिरकार पवित्र शास्त्र के अन्य भागों में भले और बुरे को जानना उपलब्धि माना गया है। फिर भी इस अनिश्चितता के बावजूद यह साफ है कि परमेश्वर ने यह देखने के लिए आदम और हव्वा को जांचना चाहा कि वे उसके प्रति वफादार होंगे या नहीं। यदि आदम और हव्वा आज्ञाकारी रहते हैं तो वे परमेश्वर से इनसे भी बड़ी आशीषों को प्राप्त करेंगे, लेकिन यदि वे अनाज्ञाकारी साबित होते हैं तो वे परमेश्वर के दंड को भोगेंगे। अदन एक पवित्र स्थान था और वहां रहने वाले लोगों को भी पवित्र होना था। अदन की वाटिका में विश्वास योग्यता की परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा मूसा ने इसराइलियों से, जिन्हें वह प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर ले जा रहा था, ठीक वैसी ही वफादारी दर्शाने के लिए जोर दिया था। जब मूसा इसराइल को प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर ले जा रहा था तो उसने उन्हें बार बार चेतावनी दी कि परमेश्वर अपने प्रति उनसे विश्वास योग्यता की मांग करता है। मूसा ने व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय में संक्षेप में इस बात पर अपनी शिक्षा को सारांशित किया है। व्यवस्था विवरण अध्याय 8:1 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। इस पद से यह स्पष्ट है कि परमेश्वर इसराइल से अपने प्रति वफादारी की मांग करता था ताकि वे कनान देश में प्रवेश और उसमें वास कर सकें। वास्तव में जंगल में देश के पूरे भ्रमण के दौरान उन्हें यह सिखाने के लिए कि पवित्र कैसे बनना है परमेश्वर ने इसराइलियों की परीक्षा की थी। व्यवस्था विवरण अध्याय 8:2 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। इसके अलावा मूसा ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार जब इसराइल राष्ट्र पवित्र देश में प्रवेश करता है तो उन्हें परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहना है, नहीं तो वे इस आशीष को खो देंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 8:10-20 में जिस तरीके से उसने इसे कहा उसे सुनिए, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा, इसलिए सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। मूसा जानता था कि इसराइली लोगों को आदम और हव्वा की ही तरह परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ विद्रोह करने की आदत थी, और इन प्रवृत्तियों के कारण मूसा ने चेतावनी देने के लिए वाटिका में आदम और हव्वा की परीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया कि परमेश्वर कनान में रहने की इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति से वफादारी की मांग करता है। बेशक परमेश्वर इसराइल से सिद्धता की मांग नहीं करता, और यह केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव है कि कोई व्यक्ति विश्वास योग्य बने। फिर भी अगर इसराइल परमेश्वर की व्यवस्था का संगीन रूप से उल्लंघन करे और उससे दूर हो जाए, जैसा कि आदम और हव्वा ने वाटिका में किया था, तो वे प्रतिज्ञा किए हुए देश की आशीषों का आनंद नहीं ले पाएंगे। जब मूसा ने इसराइल को प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, तो वह चिंतित था कि जीवन की इस विशेष बात को वे उस देश में याद रखें। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आदम और हव्वा से विश्वास योग्यता की मांग पर मूसा के ध्यान केंद्रण के प्रमुख कारण को हम देख सकते हैं। उसने इस मुद्दे पर इसराइलियों को प्रेरित करने के लिए जोर दिया कि परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादार बने रहने के द्वारा वे उस गलत कदम को दोहराने से बच जाएंगे जो आदम और हव्वा ने किया था। आदम और हव्वा को वाटिका में परखा गया था और उन्हें बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने पाप किया था। मूसा के दिनों में इसराइल अभी भी अदन की वाटिका के बाहर था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें परखा ताकि अदन में फिर से प्रवेश और परमेश्वर की आशीषों में वहां वास करने के लिए इसराइल देश को तैयार करे। इसलिए हम देखते हैं कि मूसा ने अदन की वाटिका में विश्वास की परख के बारे में लिखा था। उसने न केवल इसराइल को समझाया कि आदम और हव्वा के अति प्राचीन दिनों में क्या हुआ था, बल्कि उसने यह भी समझाया कि उसके अपने दिनों में क्या हो रहा था। परमेश्वर इसराइल को अदन की वाटिका में जीवन की अद्भुत आशीष को देना चाह रहा था। फिर भी आदम और हव्वा के समान वे इन आशीषों का आनंद नहीं ले सकते थे जब तक कि वे परमेश्वर के प्रति वफादार ना हों। मूसा इसराइल को एक पवित्र लोगों के रूप में विश्वास के द्वारा जीने के लिए बुला रहा था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति पूरी रीति से समर्पित हों। केवल तभी वे देश में प्रवेश और वहां शांति से रहने की आशा कर सकते थे। अभी तक हमने देखा है कि किस तरह मूसा ने अदन के देश और कनान देश को पृथ्वी पर परमेश्वर की आशीष वाले स्थान के रूप में चित्रित किया था, और हमने यह भी देखा कि उसने इस विचार को कैसे व्यक्त किया कि दोनों देश उनमें रहने वाले लोगों से वफादारी के साथ सेवा की मांग करते थे। अब हम इसराइल के लिए उत्पत्ति अध्याय 2 और अध्याय 3 के वास्तविक अर्थ के तीसरे आयाम पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, आदम और हव्वा की विश्वासघात के परिणाम। वाटिका में हुई अनाज्ञाकारिता और विश्वासघात के परिणामों को देखने के लिए हम आदम और हव्वा के पाप के तीन प्रभाव को देखेंगे, मृत्यु, दर्द और निष्कासन। पहले स्थान पर मूसा ने समझाया कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पाप के परिणाम स्वरूप मृत्यु की चेतावनी दी थी। यह विषय पहली बार उत्पत्ति अध्याय 2 पद 17 में आदम को परमेश्वर द्वारा दी गई चेतावनी में प्रकट होती है। वहां परमेश्वर ने कहा, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इन वचनों में कि तू अवश्य मर जाएगा एक वाक्य शैली नजर आती है जो आने वाली मृत्यु की निश्चितता को दर्शाती है। इस वाक्य का व्याकरणिक निर्माण उस वाक्य से बिल्कुल मेल खाता है जिसे मूसा ने अपनी व्यवस्था में मृत्यु की सजा की चेतावनी देते हुए लिखा था। जब मूसा की व्यवस्था गंभीर अपराध के दोषियों के खिलाफ मृत्यु की सजा की चेतावनी देती थी, तो मूसा घोषित करता था, वह निश्चित रूप से मर जाएगा या वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। इन अध्यायों का कानूनी संदर्भ सुझाव देता है कि ये अभिव्यक्तियां मृत्युदंड घोषित करने का तरीका थीं। परमेश्वर यह नहीं कह रहा था कि आदम और हव्वा तुरंत मर जाएंगे, परंतु यह कि पाप के कारण मृत्यु निश्चित रूप से आएगी। इस प्रकाश में उत्पत्ति अध्याय 2 पद 17 में आदम के लिए परमेश्वर की चेतावनी को हम ऐसा बताते हुए समझ सकते हैं कि आदम मृत्यु के अधीन हो जाएगा, उसे मृत्यु के लिए दोषी ठहराया जाएगा। निश्चित रूप से मूसा ने यह समझाने के लिए कि संसार में मृत्यु कैसे आई, आदम के पाप के इस परिणाम के बारे में लिखा था, लेकिन उसका उद्देश्य इसराइलियों के अनुभव से, जिनके लिए उसने इसे लिखा, ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में संबंधित था। वे मृत्यु से अच्छी तरह परिचित थे। मूसा के पाठकों ने मिस्र को छोड़कर आए पहली पीढ़ी के ज्यादातर लोगों को जंगल में मरते हुए देखा था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था। जैसा कि मूसा ने गिनती अध्याय 26 पद 65 में लिखा, यहोवा ने उन इसराइलियों के विषय कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे, और इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। एक बार फिर हम भाषा को देखते हैं, वे निश्चय मर जाएंगे। जो मूसा की व्यवस्था और वाटिका में आदम और हव्वा की कहानी को दिखाता है, इस संबंध में इसराइली लोग आदम और हव्वा की कहानी को सुनकर जंगल में मृत्यु के अपने अनुभव को आदम और हव्वा द्वारा परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन के साथ जोड़ सकते थे। वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा के प्रति विश्वासघात का परिणाम मानवता के पहले माता पिता पर मृत्यु की सजा थी, और यही सजा इसराइलियों पर भी थी जो मूसा के दिनों में परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति गंभीर रूप से अविश्वासी साबित हुए थे। जब हम उत्पत्ति की कहानी पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट है कि आदम और हव्वा के लिए मृत्यु तुरंत नहीं आई थी। पहले परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दर्द और पीड़ाबद्ध जीवन का अनुभव करने दिया। एक और उत्पत्ति अध्याय 3 पद 16 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। दूसरी ओर परमेश्वर ने आदम को भी दर्द भरे जीवन की सजा दी। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 17 में आदम के लिए हम इन वचनों को पढ़ते हैं, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। वाटिका में पाप के परिणामों के बारे में मूसा जो कुछ भी कह सकता था, उन सभी में उसके द्वारा मानव पीड़ा पर यह दोहरा ध्यान केंद्रण करना इसराइल के लिए इस कहानी को लिखने के उसके उद्देश्य के साथ सटीक बैठता है। कनान देश से बाहर रहते हुए उन्होंने यहां वर्णित पीड़ा के प्रकारों का अनुभव किया था, लेकिन मूसा ने जिस तरीके से प्रतिज्ञा किए हुए देश में जीवन का वर्णन किया है उसे सुनिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 पद 10 और 12 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं, देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है, और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। संक्षेप में, मूसा इसराइल को ऐसे स्थान में ले जा रहा था जहां उन्हें उस कष्ट और पीड़ा से, जिसका अनुभव उन्होंने कनान के बाहर रहते हुए किया था, राहत मिलेगी। परिणाम स्वरूप, जब मूसा ने आदम और हव्वा पर आए दंड के बारे में लिखा, तो उसने अपने इसराइली पाठकों को अविश्वास के पाप, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ा और मृत्यु आई, से दूर रहने की और परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहने के लिए आज्ञा दी, जिससे कि वे कनान को लौट सकें और परमेश्वर की आशीषों में जीवन की खुशियों का अनुभव ले सकें। आदम और हव्वा की अनाज्ञाकारिता का तीसरा प्रभाव अध्याय 3:22 में प्रकट होता है। उत्पत्ति अध्याय 3:22 के वचनों पर गौर करें। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। यह पंक्ति स्पष्ट करती है कि जीवन का वृक्ष मानवता को हमेशा के लिए जीवित रखने में सक्षम था। दर्द और मृत्यु की समस्या का यह अंतिम समाधान था। फिर भी परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस समय आदम और हव्वा इसे खाएं। उन्हें वाटिका से और जीवन के वृक्ष से निष्कासित कर दिया गया था। हमारे लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के लिए जीवन के वृक्ष तक पहुंच हमेशा के लिए वर्जित नहीं थी। शेष पवित्र शास्त्र यह स्पष्ट कर देता है कि जो लोग परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, वे अंततः इस वृक्ष में से खाने के लायक होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:7 में जीवन के वृक्ष के बारे में प्रेरित यूहन्ना ने जो कहा, उसे सुनिए। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा। अब यूहन्ना उस अंत समय के विषय में बोलता है जब मसीह वापस पृथ्वी पर लौटेगा। फिर भी उसके वचनों ने समझाया है कि क्यों मूसा ने इस वृक्ष के बारे में इसराइल को लिखा। जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष का मार्ग को बंद कर दिया, लेकिन मूसा के दिनों में परमेश्वर इसराइल के लिए उस मार्ग को खोल रहा था ताकि जब वे कनान देश को लौटें तो कम से कम जीवन की आशीष के पूर्व स्वाद को चख सकें। व्यवस्था विवरण अध्याय 30:19-20 में मूसा ने जिस तरीके से इसे लिखा, उसे सुनिए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। यदि इसराइली लोग परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे तो उन्हें कनान देश में दीर्घ जीवन और खुशी प्राप्त करने का सुअवसर मिलेगा। जिस तरह आदम और हव्वा ने जीवन के वृक्ष तक अपनी पहुंच को खो दिया, उसी तरह मूसा के दिनों में परमेश्वर इसराइल को वहां पाए जाने वाले जीवन की आशीष के आंशिक स्वाद को चखने का अनुभव प्रदान कर रहा था। जीवन का यह अनुभव उस अनंत जीवन का पूर्ण मानक नहीं था जिसे हम मसीह के दूसरे आगमन के दौरान अनुभव करने पाएंगे। फिर भी मसीह के आगमन के साथ आने वाले आनंद का ये आंशिक पूर्व स्वाद रहा होगा। मूसा ने इसराइलियों के सामने प्रतिज्ञा किए हुए देश में दीर्घ जीवन की आशीष का आनंद प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा था। इस तरह हमने देखा कि अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के विद्रोह की कहानी संसार में पाप की उत्पत्ति की कहानी से बहुत बढ़कर थी। अदन और कनान के बीच संबंधों को स्पष्ट कर मूसा ने इसराइली पाठकों को उनके अपने जीवनों के बारे में सिखाया। उन्होंने सीखा कि प्रतिज्ञा किया हुआ देश उनके लिए कितना अद्भुत हो सकता है। अब जबकि हमने उत्पत्ति अध्याय 2 और 3 की साहित्यिक संरचना और वास्तविक अर्थ को देख लिया है, हम तीसरा प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं। इस अध्याय को अपने जीवन में लागू करने में नया नियम हमें कैसे सिखाता है? हमारे सामने अब यह स्पष्ट है कि मूसा ने अपने इसराइली पाठकों को आदम और हव्वा की गलतियों को ना दोहराने और कनान देश में प्रवेश के द्वारा स्वर्ग के मार्ग पर वापस मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इन अध्यायों को लिखा था। लेकिन इसराइल को दिए गए निर्देशों से आज हमारा क्या वास्ता है? साधारण शब्दों में कहें तो जिस तरह मूसा ने आदम के उठाए गलत कदम को वापस ना दोहराने हेतु इसराइल को प्रोत्साहित करने के लिए वाटिका की पाप की कहानी का प्रयोग किया था ताकि वे फिर से स्वर्गिक उद्धार को पा सकें, वैसे ही नए नियम के लेखकों ने सिखाया है कि मसीह में उद्धार भी स्वर्ग लोक की ओर एक वापसी है। हम मसीह के राज्य के 3 चरणों पर सामान्य रीति से ध्यान केंद्रित करने के द्वारा मसीह के संबंध में उत्पत्ति अध्याय 2 और 3 पर नए नियम के उपयोग की खोज करेंगे। इस अध्याय को मसीह के पहले आगमन में उसके राज्य के आरंभ के साथ इसे कैसे लागू किया गया है, इसको देखने के द्वारा शुरू करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आज परमेश्वर के राज्य की निरंतरता में यह हमारे जीवनों के साथ कैसे बातें करता है। और आखिर में हम देखेंगे कि जब यह वचन मसीह के दूसरे आगमन में उसके राज्य की परिपूर्णता के बारे में सिखाता है तो नया नियम इस अध्याय से क्या निष्कर्षों को निकालता है। आइए पहले राज्य के आरंभ पर विचार करते हैं। वह एक तरीका है जिसके तहत नया नियम मसीही द्वारा लाए उद्धार के बारे में बताता है, वह है पृथ्वी पर की गई उसकी सेवकाई। राज्य के आरंभ में मसीह ने पीछे जाकर उस गलती को सुधार दिया जिसे अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने किया था। पृथ्वी पर अपनी सेवकाई के दौरान मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया जिसमें आदम और हव्वा असफल रहे थे। पहले यह देखने के द्वारा कि पौलुस की पत्रियों में यह विषय कैसे प्रकट होता है और दूसरा मत्ती के सुसमाचार में यह कैसे प्रकट होता है, हम नए नियम की शिक्षा के इस पहलू की जांच करेंगे। आइए पौलुस के दृष्टिकोण के साथ शुरू करते हैं। पौलुस ने संक्षेप में अपने दृष्टिकोण को रोमियो अध्याय 5:14 में सारांशित किया है। वहां उसने लिखा, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। ध्यान दें कि आदम उस आने वाले का एक चिन्ह था। बाकी रोमियो 5 इसको और स्पष्ट करता है कि वह आने वाला मसीह था। रोमियो अध्याय 5:18 और 19 जिस तरीके से पौलुस ने इसे सारांशित किया उसे सुनिए। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ध्यान दें कि पौलुस ने किस तरह से इसे यहां बताया है। आदम का एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा लाने का कारण हुआ, लेकिन मसीह की धार्मिकता सब मनुष्यों के धर्मी ठहराए जाने का कारण हुई। ऐसा क्यों था? क्योंकि एक मनुष्य आदम की अनाज्ञाकारिता ने हमें पापी बना दिया था, लेकिन एक मनुष्य मसीह की आज्ञाकारिता में हम धर्मी ठहराए गए। अधिकांश मसीही लोग इस शिक्षा से परिचित हैं। जिस तरह मूसा ने उत्पत्ति अध्याय 2 और 3 में सिखाया था कि आदम सिर्फ एक साधारण आदमी था, लेकिन उसके कार्यों का परिणाम उन सब के ऊपर पड़ा जो उसके साथ पहचाने जाते हैं। आदम का पाप संपूर्ण मानव जाति के लिए मृत्यु को लेकर आया, क्योंकि परमेश्वर के साथ बांधी वाचा में वह हमारा प्रतिनिधि था। आदम के पाप के परिणाम स्वरूप हम सभी परमेश्वर की आशीष और स्वर्ग लोक के बाहर और मृत्यु के अभिशाप के अधीन हो गए हैं। लेकिन साथ ही नया नियम सिखाता है कि जो मसीह पर विश्वास लाते हैं उनके लिए मसीह वाचा में उनका प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी आदम की अनाज्ञाकारिता के विपरीत परमेश्वर के प्रति मसीह की आज्ञाकारिता उन सभी के लिए धार्मिकता और जीवन को लाती है जो उसमें गिने जाते हैं। इस शिक्षा से हम अपने जीवनों में आदम के पाप की कहानी को लागू करने के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखते हैं। खोए हुए स्वर्ग लोक को दोबारा पाने का एकमात्र रास्ता मसीह की धार्मिकता और आज्ञाकारिता के माध्यम से है। हम परमेश्वर के सामने अनंत जीवन में अपनी योग्यता के बल पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमसे पहले स्वर्ग लोक में प्रवेश करने के लिए हमें एक बिल्कुल सिद्ध प्रतिनिधि की आवश्यकता है, और मसीह वह प्रतिनिधि है। परमेश्वर की उपस्थिति में उद्धार और अनंत जीवन को हम केवल इसलिए पाते हैं क्योंकि मसीह परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से आज्ञाकारी था। पृथ्वी पर अपनी सेवा में मसीह ने स्वर्ग लोक में प्रवेश का अधिकार को पुनः अर्जित किया, और केवल वे जो उस पर अपने विश्वास को लाते हैं उसके साथ प्रवेश कर सकते हैं। आदम और मसीह के बीच आपसी संबंध को अन्य नए नियम के लेखकों ने भी व्यक्त किया था। आइए विचार करते हैं कि मत्ती के सुसमाचार में यह विषय कैसे प्रकट होता है। मत्ती अध्याय 4:1-11 में मसीह की परीक्षा की कहानी में मत्ती ने विशेष रूप से उस तरीके पर ध्यान आकर्षित किया जिसमें मसीह ने आदम के पाप को या पलटकर उसे सुधार दिया, जिसके समानांतर वचन लूका अध्याय 4:1-13 में पाया जाता है। कई अलग अलग तरीकों से मसीह की परीक्षा की कहानी, वाटिका में आदम और हव्वा के अनुभव और मूसा द्वारा इसराइलियों के लिए लाई गई उन चुनौतियों, दोनों के समानांतर हैं जब उसने आदम और हव्वा के बारे में लिखा था। सबसे पहले मसीह की परीक्षा का स्थान इसराइल के साथ उसे जोड़ता है जब इसराइली लोग मूसा के पीछे चल रहे थे। मत्ती अध्याय 4:1 के अनुसार आत्मा यीशु को जंगल में ले गया था, ठीक उसी तरह जैसे परमेश्वर इसराइल को जंगल में ले गया था। जंगल में ही परमेश्वर ने इसराइल की परीक्षा यह देखने के लिए की थी कि वह आज्ञाकारी होगा कि नहीं, और मसीह की भी परीक्षा जंगल में की गई थी। दूसरा, जंगल में व्यतीत किया गया यीशु का समय अंतराल इसराइल के अनुभव के जैसा था। जिस तरह इसराइल जंगल में 40 वर्ष के लिए था, उसी तरह मत्ती अध्याय 4 पद 2 के अनुसार मसीह जंगल में 40 दिन के लिए था। तीसरा, मसीह की परीक्षा में भूख एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। मत्ती अध्याय 4 पद 3 में शैतान ने पत्थर को रोटी में बदलने के लिए मसीह की परीक्षा की थी। मसीह की परीक्षा का यह आयाम जंगल में पानी और खाने के लिए इसराइल के परखे जाने के समानांतर था। चौथा, यीशु द्वारा पवित्र शास्त्र का उपयोग करने के तरीकों में यीशु ने स्वयं अपने अनुभव को जंगल में इसराइल के परखे जाने के साथ जोड़ा था। मत्ती अध्याय 4 पद 4 में यीशु ने व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पद 3 का हवाला दिया। मत्ती अध्याय 4 पद 7 में उसने व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पद 16 का हवाला दिया और मत्ती अध्याय 4 पद 10 में उसने व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पद 13 का हवाला दिया। ये पुराने नियम के अध्याय व्यवस्था विवरण के उन भागों में से हैं जहां मूसा ने जंगल में इसराइल की परीक्षा का वर्णन किया था। इन पदों का हवाला देने के द्वारा यीशु ने प्रत्यक्ष रूप में परीक्षा के अपने अनुभव को इसराइल देश के परखे जाने के साथ जोड़ा था। इस तरह हम देखते हैं कि मत्ती द्वारा वर्णित यीशु की परीक्षा की कहानी उस संदेश के साथ जुड़ती है जिसे मूसा ने मूल रूप से उत्पत्ति अध्याय 2 और 3 के माध्यम से इसराइल को दिया था। अपने सक्रिय आज्ञाकारिता के द्वारा यीशु वहां सफल हुआ जहां दोनों आदम और इसराइल विफल रहे थे। मसीह परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादार था, इसलिए यीशु ने उन प्रसिद्ध वचनों को बोला था जो लूका अध्याय 23 पद 43 में पाए जाते हैं। जिस तरह से कनान देश में प्रवेश करने के लिए इसराइल को तैयार करने हेतु उन्होंने जंगल में परीक्षा का सामना किया था, उसी तरह लूका अध्याय 23 पद 43 लिखता है कि क्रूस पर यीशु ने पश्चाताप करने वाले चोर से ये वचन बोले थे, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मसीह का इनाम उसकी धार्मिकता के लिए स्वर्ग लोक में अनंत जीवन था। इस तरह हम देखते हैं कि नया नियम आदम और हव्वा की कहानी और साथ में जंगल में इसराइल की परीक्षा को भी मसीह की सांसारिक सेवकाई में राज्य के आरंभ के साथ जोड़ता है। मसीह वह अंतिम आदम था जो वहां सफल हुआ जहां आदम विफल हुआ था। इसके अलावा इसराइल की विफलता को पलटने के द्वारा मसीह जंगल में परीक्षा पर विजय पाता है और इस कारण से उसने अनंत स्वर्ग लोक में प्रवेश किया। अब जबकि हमने देख लिया है कि किस तरह से नया नियम मूसा द्वारा रचित वाटिका में आदम और हव्वा की कहानी को मसीह के पहले आगमन के साथ जोड़ता है, हमें अपने दूसरे पहलू पर आना चाहिए। किस तरह से नया नियम इन सिद्धांतों को राज्य की निरंतरता के लिए लागू करता है, यानी वह समय जिसमें अब हम रहते हैं। इस संबंध में नए नियम के कई अनुच्छेद सामने आते हैं, लेकिन हम केवल दो को ही देखेंगे। पहला, उत्पत्ति के इन अध्यायों पर पौलुस का ध्यान केंद्रण, और दूसरा, जिस तरह से याकूब ने इन बातों को लिखा। आइए सबसे पहले दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 3 में पौलुस के वचनों को देखते हैं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। जैसे जैसे पौलुस इस अध्याय में आगे बढ़ता है तो उसने बताया कि वह बहुत चिंतित था कि कुरिन्थियों की कलीसिया अन्य सुसमाचार को मानने लगेगी। यहां हम देखते हैं कि पौलुस हव्वा के नकारात्मक उदाहरण पर जोर देते हुए विश्वासघात के प्रकारों में सबसे खराब तरह के विश्वासघात के खिलाफ चेतावनी देता है, यानी मसीह के सच्चे सुसमाचार को त्यागना। जिस तरह मूसा ने हव्वा की परीक्षा की कहानी का उपयोग इसराइल को ईमानदारी के साथ प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जाने हेतु चेतावनी देने के लिए किया था, उसी तरह से पौलुस ने अपने दिनों में मसीह के सभी अनुयायियों को तथा उनसे अपेक्षित बुनियादी वफादारी के बारे में चेतावनी देने के लिए इस कहानी का उपयोग किया था। राज्य की निरंतरता के दौरान दृश्यमान कलीसिया में कई लोग सुसमाचार की मूलभूत सच्चाइयों को त्यागने के खतरे का सामना करते हैं। इस आक्रामक रीति से विश्वास के त्यागे जाने के खिलाफ कलीसिया को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम उतने ही भयानक हैं जितने कि वे आदम और हव्वा के लिए थे। याकूब ने जब मसीही लोगों के जीवन में परीक्षा और परख की भूमिका का वर्णन किया तो वह पौलुस जैसा ही दृष्टिकोण अपनाता है। याकूब अध्याय 1:12-15 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट है कि याकूब ने उत्पत्ति अध्याय 2 और 3 की ओर संकेत किया था। अध्याय 1:14 में उसने पाप में गिरने के पीछे का कारण मनुष्य की शक्तिशाली एवं तीव्र अभिलाषा को बताया है। यह भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के लिए हव्वा की अभिलाषा थी जिसके कारण उसने पाप किया। दूसरा, याकूब ने समझाया कि जो परीक्षा में खरा निकलेगा वह जीवन का मुकुट पाएगा। इसके विपरीत पाप का परिणाम यह है कि यह मृत्यु को जन्म देता है। यहां जीवन और मृत्यु के बीच जो विषमता है वह आदम और हव्वा की कहानी में जीवन और मृत्यु के बीच विषमता के जैसी है। जिस तरह मूसा ने आदम और हव्वा की परीक्षा के बारे में जोर देने के द्वारा जंगल में परीक्षा के दौरान इसराइल में विश्वास योग्यता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया, उसी तरह से पौलुस और याकूब ने राज्य की निरंतरता में परीक्षाओं के दौरान हमें वफादारी के लिए प्रोत्साहित किया। मसीही जीवन के दौरान परीक्षाएं हमारे सच्चे चरित्र को उजागर करती हैं और हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करती हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मसीह के प्रति विश्वास योग्य बने रहने के लिए हम जो भी कर सकते हैं वह हमें करना चाहिए, ताकि स्वर्ग लोक में हमें अनंत जीवन के उपहार से सम्मानित किया जा सके। यह देखने के बाद कि नया नियम किस तरह से वाटिका में आदम और हव्वा की कहानी को राज्य के आरंभ और निरंतरता के लिए लागू करता है, हमें अब अपने ध्यान को अंतिम चरण पर मोड़ना चाहिए, यानी दूसरे आगमन पर मसीह में उद्धार की परिपूर्णता। यह विषय भी नए नियम में कई स्थानों पर प्रकट होता है, लेकिन हम केवल 2 अनुच्छेदों को ही देखेंगे, एक रोमियो में और दूसरा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। सबसे पहले उस शैली पर ध्यान दें जिसमें पौलुस अपनी पत्री को समाप्त करते हुए रोम के विश्वासियों को आशा दे रहा था। रोमियो अध्याय 16:20 में उसने इन वचनों को लिखा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। इन वचनों में पौलुस ने रोम के मसीहों को मसीह के दूसरे आगमन में उसकी महान आशा की याद दिलाई, लेकिन उसने उत्पत्ति अध्याय 3 में उद्धार की प्रतिज्ञा का वापस हवाला देते हुए ऐसा किया, जैसा कि हमने इस पाठ में पहले देखा है। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 में परमेश्वर ने सर्प से कहा था कि एक दिन हव्वा का बीज मानव जाति सर्प के बीज के सिर को कुचलेगा। इस पद में पौलुस ने कहा कि जब मसीह वापस आएगा तो शैतान मसीही लोगों के पांवों तले कुचला जाएगा। मसीह स्वयं शैतान को और हमारे शक्तिशाली दुश्मन मौत को नष्ट कर देगा। तब हम लोग मसीह के साथ विजय और महिमा में राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नए नियम में एक ऐसी पुस्तक है जहां उत्पत्ति अध्याय 2 और 3 के विषय राज्य की परिपूर्णता से संबंधित हैं। यूहन्ना ने इस पुस्तक में कई मौकों पर जीवन के वृक्ष का हवाला दिया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 7 में यूहन्ना जिस तरीके से इस बात को कहता है उसे सुनिए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। यहां पर उत्पत्ति अध्याय 3 के लिए संकेत स्पष्ट है। हम जानते हैं कि आदम और हव्वा को इसीलिए अदन की वाटिका से निष्कासित कर दिया गया था ताकि वे जीवन के वृक्ष से फल ना खाएं। फिर भी जब मसीह वापस आएगा तो परमेश्वर अपने लोगों को जीवन के वृक्ष से खाने का अधिकार देगा। इस पर भी ध्यान दें कि यह वृक्ष कहाँ स्थित है। यूहन्ना ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। जिस तरह मूसा ने इसराइल को कनान देश में प्रवेश करने के लिए बुलाहट दी क्योंकि वहां लंबा जीवन पाया जा सकता था, वैसे ही मसीही लोगों के पास उससे भी बढ़कर पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित स्वर्ग लोक में प्रवेश करने की अपनी आशा है। तीसरे स्थान पर उन लोगों की पहचान में जो उस वृक्ष में से खाएंगे और उत्पत्ति में एक और संबंध देखते हैं। यूहन्ना ने कहा कि जो जय पाएगा उसे अधिकार दिया जाएगा। जिस तरह मूसा ने इसराइल को परमेश्वर के प्रति वफादार बनने के लिए प्रोत्साहित किया, उसी तरह यूहन्ना ने समझाया कि केवल वह जो वफादार रहने के द्वारा पाप पर विजय पाता है वही जीवन के वृक्ष से खाने पाएगा। अंत में हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 1 और 2 को देखना चाहिए। जब यूहन्ना ने आने वाले नए संसार की ओर देखा तो जो उसने देखा वह यह है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। नए नियम का दृष्टिकोण साफ है। जब मसीह अपने राज्य की परिपूर्णता में वापस लौटता है तो वे जो मसीह पर विश्वास करते हैं अदन के स्वर्ग लोक में प्रवेश करेंगे। शैतान हमारे पांवों तले कुचला जाएगा और हम जीवन के वृक्ष में से खाएंगे और परमेश्वर की नई सृष्टि में हमेशा के लिए रहेंगे। इस पाठ में हमने देखा कि मूसा ने इसराइलियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर ले जाते हुए उनकी मदद के उद्देश्य से वाटिका में आदम और हव्वा के बारे में लिखा। उसने अदन की वाटिका की घटनाओं में पीछे जाने और उन गलती को सुधारने के लिए इसराइल देश को बुलाहट दी थी। कई मायनों में इस वचन का संदेश आज हमारे लिए भी ठीक वैसा ही है। प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर आगे बढ़ने के लिए इसराइल को दी गई मूसा की बुलाहट को सुनने के द्वारा हम देख सकते हैं कि किस तरह हमें भी आदम और हव्वा के गलत कदमों में पीछे जाने, उस पर विचार करने और दोबारा वैसा नहीं करना चाहिए। मसीह पर भरोसा एवं उसके प्रति वफादार बने रहने के द्वारा हम खोए और पाए हुए स्वर्ग लोक के उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे।